सब लोग साथ में बोलो, साथ में सब लोग बोलो साथ में।
निरंजन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा करो भुवि भुवो भारवहन्तारको वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे कनि पुरो सन्धर्म संस्थापतो मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्दे नमः वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धाश्रमिदन्वितो तापो ताप निकिन्तनो तनुवृतां गोविन्द गानामृते वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको शेषमण्डलपति श्रेणीं सनातोच्चव भूत्वा दीन गणेश करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपी भावर सामृता दिलारी कलोलमग्नो वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको किल हंस सारस गणा मयूरा कुले रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण संप्रभजतो जीवार्थदयो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गाननतिवे कालवशानि कृतो निद्रार विहार कादि विजितो अत्यन्त दीनोचयो राधा कृष्ण गुणेश ते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको सुंद तटे कलिंद तनया तीरे चवन शिव ते माधव साध से सदसया भ्रष्ट प्रमत्त सदा गायन्तो च कदारेर्गुणवरम् भावाविभूतो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेवमुपायकम् राधे व्रज देवी के चललिते नंद सुनो पुतो सुनंदम कल्प पाद पदले कालिंद मन्ने पुतो संता सर्वतो भजपुरे महाविवलो वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीदेव गोपालको
श्री सद गोस्वामी अष्टकम की जय। जीव गोस्वामी पाद आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। तो वृंदावन के जो छह गोस्वामी हैं, श्रीनिवास आचार्य ने जो ये अष्टकम लिखा हुआ है इन गोस्वामी के विषय में, इन छह गोस्वामियों में से छह गोस्वामी कौन कौन से हैं? चेतन प्रभु बताइए छह का नाम। छह गोस्वामी के नाम बताइए, तुम बताओ। और एक गोपाल भट्ट गोस्वामी। बंदे बंदे रूप रूप सनातन रघु गो श्री जीव गोपाल को सीधा सीधा से गा रहे हैं। अच्छो सीधा सीधा गा रहे हैं, याद है ना? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रटंती विद्या। तोते की तरह रट लिया, लेकिन ये बड़ी समस्या है ना, इसलिए मैं उस दिन बताया ना, लोग गाते हैं कायन वाचा मनसे इंद्रिय विवाह, उसका अर्थ नहीं पता है। उसका अर्थ भी जानते ना लोग। तो उद्धार है उनका। है ना, तो कभी भी हम ये याद करते ना, उसका मनन मनन होना चाहिए उसको, ऊपर क्या चीज को बोल रहे हैं, कभी कभी याद रहता है लेकिन बोल नहीं पाते है। तो इन छह गोस्वामियों में से आज हम जीव गोस्वामी पाद के विषय में चर्चा करेंगे। महान भक्त जीव गोस्वामी पाद, इन छह गोस्वामी में से बताए तीन गोस्वामी की विशेषता क्या है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद की विशेषता क्या है? एक ही घर के है। है ना, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और श्री वल्लभ, ये तीन भाई थे। और जो तीन भाई थे जिसमें अग्रज थे, जो बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी पाद और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद और उसके बाद वल्लभ, श्री वल्लभ, है ना। बाद में रूप गोस्वामी पाद अग्रज कहलाए, चैतन्य महाप्रभु के उनके ऊपर पहले कृपा हुई। तो ये जो श्री वल्लभ थे, इस श्री वल्लभ के पुत्र थे जीव गोस्वामी पाद, समझे? ये होमवर्क भी रहेगा, मैं जब गोस्वामी के बारे में कभी भी चर्चा करूंगा ना, तो होमवर्क उसके अंदर से दूंगा ही दूंगा, है ना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर पनिशमेंट आएगा। तो कभी भी मैं गोस्वामी के विषय में चर्चा करूंगा ना, तो उसमें से निश्चित रूप से होमवर्क कराएगा, क्योंकि हमारे वही तो प्राण है, हमारी प्रगति भक्ति मार्ग में तो उन्हीं को जीवन को सुन के, जीवन कथाओं को स्मरण रख के, उनकी ही तो कृपा प्राप्त करना है हमको। हम नहीं होगा कृपा तो फिर हम ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, है ना। तो फैन चाहते तो मेरे को और जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ बैठो, वहां बैठो, यहाँ जाओ, हवा आएगा। तो जीव गोस्वामी पाद जो कि श्री बल्लभ के पुत्र है ना, तो इनका जो आविर्भाव दिवस है ना, कभी भी आविर्भाव दिवस मतलब क्या, जन्मदिन, पेरेंट्स डे, जन्मदिन। लेकिन एक जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, विशेष करके भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए ये जन्म शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? आविर्भाव दिवस या प्राकट्य दिवस, अप्रकट है ना, तिरभाव तिथि है ना उनके, क्योंकि वो इस जगत के है ही नहीं एक्चुअली। ये तो हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, वो कृपा प्रदान करने के लिए वो आए और अपनी लीला किए, भगवान ने उनको अपनी लीला में शामिल किया है ना। इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों का जो प्रकट अप्रकट है ना, उसको जन्म और मृत्यु से तुलना नहीं कर सकते हैं। कभी भी प्रकट अप्रकट होते हैं आविर्भाव तिर्भाव, तो मैं बात को बार बार बताता हूँ है ना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान बताते हैं गीता में, जिस प्रकार से उनका जन्म और कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से इन भक्तों का भी जन्म और कर्म दिव्य है। हमको ये बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जीव गोस्वामी पाद जो कि भगवान के नित्य पार्षद है ना, भगवान के नित्य पार्षद में से एक है, वह भगवान के नित्य लीला में वह विलास मंजरी के रूप में सेवारत है ना, विलास मंजरी के रूप में सेवारत है जीव गोस्वामी पाद। तो जीव गोस्वामी पाद बहुत ही निकट के सेवक है भगवत धाम, भगवान के नित्य लीला में। और विशेष करके ये जो छह गोस्वामी है, ये यहाँ जब प्रकट लीला में, वह भगवान के निकट पार्षद ही थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना, एकदम निकट के पार्षद थे। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष इन लोग के ऊपर कृपा किया है ना, कृपा करने के बाद इनको वृंदावन भेजे, और वृंदावन में जो प्रकट लीला स्थलिया है ना, इन षड गोस्वामियों की कृपा है ना। वृंदावन गए आप, है ना, सब लोग गए होंगे ना। तो वृंदावन में हम आज जो भी कुछ देख रहे हैं, चाहे गोवर्धन हो, कुछ भी, जितनी भी लीला स्थलिया है ना, इन छह गोस्वामियों का ही देना है, इन्होंने प्रकट कराया है। भगवान 5000 साल पहले जब लीला समाप्त करके गए, उसके बाद ये लीलाएं सब अप्रकट हो गया। फिर बाद में उनके प्रपोत्र वज्रनाभ जी ने उसको फिर से प्रकटित कराया, लेकिन फिर से वो लीला स्थलियां फिर से अप्रकट हो गई, और फिर से सारे जो छह गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा किया, उन सारे लीला स्थलियों को फिर से प्रकट कराया, अर्थात लोगों तक पहुंचाया वृंदावन की महिमा को, सारे जीवों के जगत को पहुंचाया, उनको शिक्षा दिया कि वृंदावन के बारे में। तो ये छह गोस्वामी जो कि विशेष निकट थे चेतन महाप्रभु के पार्षदों में से, बहुत ही निकट थे। जीव गोस्वामी पाद के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जीव गोस्वामी एक ऐसे महान वैष्णव है और ऐसे महान दार्शनिक प्रचंड विद्वान है कि आज तक पूरे विश्व में ना तो ऐसा दार्शनिक हुआ है, ना तो ऐसा कोई प्रचंड विद्वान हुआ है, और ना कोई ऐसा विद्वान होगा, है ना, कभी भी नहीं होगा जीव गोस्वामी की बात की जैसा। वो प्रचंड विद्वान थे और साथ साथ में वो वैष्णव तक है, तो उनके बारे में भी हम सुनेंगे ना, वो सोचेंगे कितने नम्र थे, इतने प्रचंड। कभी कभी देखा जाता है कि जो विद्वान होते हैं ना, उनके अंदर नम्रता के गुण नहीं रहता है ना, वो अहंकार उनके अंदर आ जाता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना विद्वान हूँ, मैं तो शास्त्रों को इतना पढ़ लिया, मैं तो अच्छा प्रवचन करता हूँ, लोगों को कथा करके इतने हजारों लोग को इकट्ठा करता हूँ, है ना, वो नम्रता नहीं रहता। लेकिन हम देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये हमको बताया कि जीव गोस्वामी पाद के जैसा ना तो कोई हुआ और ना तो कोई आगे होगा, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी पाद कितने नम्र थे, हम आगे सुनेंगे। वो उन्होंने 500,000 श्लोकों की रचना किया है, जीव गोस्वामी पाद ने 500,000 श्लोकों की रचना की, और 25 से ऊपर ग्रंथों को लिखा है उन्होंने, 25 से ऊपर ग्रंथों को, जिसमें कि हरिनामामृत महत्वपूर्ण ग्रंथ, हरिनामामृत, गोपाल चंपू, षट संदर्भ है ना, ये सारे ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम वैष्णव के समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। हरिनामामृत मतलब ये व्याकरण सिखाया जाता है, जैसे संस्कृत व्याकरण सिखाया जाता है ना, है ना, और गोपाल चंपू, गोपाल चंपू एक्चुअली इसमें ये दो भाग है गोपाल चंपू के, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग ऐसा करके है। और उसमें पूर्व भाग में जो है वो मथुरा से पहले की भगवान की जो लीलाएं है ना वो वर्णन है, और उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें मथुरा में जो लीलाएं भगवान ने किया वो वर्णन है। भागवतम में एक्चुअली भागवतम में भगवान के सारी लीलाओं का वर्णन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के पास समय बहुत कम था, परीक्षित महाराज के पास टाइम कितना था, केवल 7 दिन था। 7 दिन में इतना बड़ा महाभागवत पुराण को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी पास ने दिया। हम जो सोचते इतना बड़ा वो संक्षिप्त है ना हमको। हाँ तो भगवान ने ना बहुत सारे ऐसे, और विशेष करके भागवतम में तो राधा रानी के विषय में वर्णन ही नहीं है, सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया नहीं, क्योंकि जानबूझकर नहीं किया। जैसे ही वर्णन करते ना वो तो समाधि में चले जाते, फिर तो सोचे कि अगर मैं राधा रानी के बारे में वर्णन किया तो फिर तो बेचारा परीक्षित का क्या होगा। इसलिए राधा रानी के विषय अभी सोचिए, राधा रानी का शुरुआत ही करते तो कितने पास टाइम राधा रानी के, तो शुरुआत ही नहीं किया उन्होंने। तो भागवतम में बहुत सारी लीलाएं नहीं है भगवान के। ऐसा वर्णन है कि भगवान डेली एक असुर को मारते थे, लंच बिना असुर को मारे करते ही नहीं थे, एक असुर को मारे उसके बाद ही जाके लंच करते थे, है ना, फ्रेंड मित्रों के साथ बैठ के, है ना, खाते हुए फोटो देखा ना सब एक साथ में मिलके खा रहे हैं, तो वो एक असुर को मारने के बाद बैठते थे वैसा जब तक असुरों को नहीं मारते तब तक वो लंच लेते ही नहीं थे। रोज के रोज इतने असुरों को मारे तो भागवत में इतना वर्णन नहीं है, इसलिए डिटेल में इन आचार्यों ने उनको उनकी लीलाओं को लिखा हुआ है। बहुत सारे लीलाएं गोपाल चंपू में है जो जीव गोस्वामी पाद ने लिखा, गर्ग संहिता में बहुत सारे लीलाएं हैं जो गर्गाचार्य ने लिखा जो भागवतम में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हम वहां पे पढ़ने के लिए हमको मिलता है। वैसे भी भक्त लोग पढ़ पढ़ के अपने लेक्चर पहुंचने में बहुत सारे ऐसे लीलाओं को बताते ही रहते हैं ऐसा। तो ये जीव गोस्वामी पाद प्रचंड विद्वान थे, इस प्रकार के बहुत बड़ा देन है एक्चुअली हरिनामा अमृत। जो ये कहाँ से लिया हरिनामा अमृत, उन्होंने एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से इन्होंने उस हरिनामा अमृत को ग्रहण किया उनके ही आदेशानुसार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पता है निमाई, वो भी बहुत पंडित थे, पहले वो संस्कृत पढ़ाते थे नवदीप में ना, संस्कृत पढ़ाया करते थे, व्याकरण पढ़ाते थे, सबने अपने मित्रों को बैठा के व्याकरण और संस्कृत को पढ़ाया करते थे, पंडित थे वो निमाई पंडित, है ना, सबको व्याकरण पढ़ाया करते थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास के बाद अभी गया गए हो, गया से जब रिटर्न आए ना तो वो व्याकरण को अभी केवल व्याकरण पढ़ाना बंद कर दिए, अभी हर एक व्याकरण हर एक संस्कृत को कृष्ण से जोड़ने लगे हो, कृष्ण से जोड़ने। तो ये जो है हरिनामा अमृत ना, इस चैतन्य महाप्रभु को गया से आने के बाद जो उन्होंने हर एक चीज को कृष्ण से जोड़ा, तो उस चीज को लेकर जीव गोस्वामी पाद ने हरिनामा अमृत को लिखा है। इसलिए कभी भी आप देखिए कोई संस्कृत का महान विद्वान है, या तो कोई जैसे ऐसे कई सारे न्यूज चैनल आते हैं संस्कृत वाले, है ना, बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में न्यूज आता है, उन न्यूज वालों का आप बताइए कि हमारा भागवतम का एक श्लोक लीजिए, उनको दे दीजिए एक श्लोक, इसका अर्थ बताइए, जीरो नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक संस्कृत को जानने वाला विद्वान व्यक्ति कभी भी भागवत को समझ ही नहीं सकता है, ये समझना तो छोड़िए एक श्लोक दे दीजिए उसका अनुवाद नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन इस हरिनामा अमृत को जीव गोस्वामी पाद के जब हम पढ़ेंगे हरिनामा अमृत को, बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं गोवर्धन में, इस हरिनामा अमृत को पढ़ाया जाता है संस्कृत, है ना, विद्यालय भागवत विद्यालय, तो वहां पे सीखते हैं। और जब तक इस हम हरिनामा अमृत को नहीं पढ़ेंगे ना, इस हरिनामा अमृत को जो पढ़ता है वो भागवत समझता है। हाँ तो ये हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हर एक चीज को उन्होंने कृष्ण से जोड़ा, और ये जो हरिनामा अमृत व्याकरण ये जो सीखेगा जो भक्त तो वो बराबर भागवत को समझेगा। इसलिए आप कभी भी संस्कृत पढ़ने वालों का बोल के देख लीजिए, आजमा दीजिए उनको, दे दीजिए गीता और भागवत का एक श्लोक, वो नहीं कर सकते अनुवाद, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये विशेष कृपा है जीव गोस्वामी पाद का हमारे ऊपर, किस प्रकार से वह इतने सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और श्री बल्लभ, ये तीनों भाई थे, और जो श्री बल्लभ थे इनके पुत्र जीव गोस्वामी पाद थे। तो अभी थोड़ा उनके हम बचपन के कुछ बचपन के विषय में कुछ जानते हैं हम, किस प्रकार से उन्होंने उनका जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति बढ़ा। तो आप सबको पता है कि रूप गोस्वामीपाद और सनातन गोस्वामीपाद कहाँ नौकरी करते थे? नवाब हुसैन साहब, जलाउद्दीन खान, कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा नाम था, मैंने बताया था ना। तो वहां पे उसके राज्य में मुसलमानों का उसमें राज चल रहा था एक्चुअली, और बहुत दबदबा था उन लोग का, बहुत परेशान करते थे ब्राह्मणों और वैष्णवों को। हाँ बिल्कुल। और वो राजा था, इन लोग को अपने नौकरी पर रखा हुआ था, और बल्लभ भी थे वहां पे, वो भी नौकरी करते थे, करना ही, मजबूरन करना ही पड़ता था। लेकिन वहां पर रहते हुए भी, वहां पर रहते हुए भी वो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे वो लोग, क्योंकि अंदर से जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम था ना उनका, वो प्रगाढ़ था प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति, बहुत प्रगाढ़ था। वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को पत्र, लेटर लिखा करते थे, बार बार पत्र को भेजते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का जवाब आता भी था और कभी कभी नहीं आता था, और चैतन्य महाप्रभु हमेशा सांत्वना देते थे, है ना, सांत्वना देते थे कि तुम लोग अभी करो नौकरी, और समय आने पे मैं आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु लेटर में लिखे थे, क्या लिखे थे लेटर में? लेटर में एक ऐसा उदाहरण दिया, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे लेकिन ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने, एक लेटर में एक शब्द लिखा। क्योंकि क्या, कभी क्या होता था, वो हो सकता है लेटर वो मुसलमानों के हाथ में लग जाए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा सीधा सीधा वर्ड नहीं लिखते थे, रिप्लाई में सीधा से, कभी कभी तो रिप्लाई नहीं भी करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था इन लोग को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द भर हो रहा है, उन लोग को ज्यादा तकलीफ हो रहा है, अपने अपने दर्द को लोग लेटर में व्यक्त करके चैतन्य महाप्रभु को भेजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन, जब चैतन्य महाप्रभु उन लोग को मिलने आने से पहले जो उनका लास्ट लेटर था ना, ये उन्होंने भेजा चैतन्य महाप्रभु ने, कि जिस प्रकार से एक स्त्री किसी पर पुरुष से आसक्त हो जाती है तो अपने घर का काम, पति देव का सेवा पूजा बहुत अच्छे से करने लगती है ना, बिल्कुल डाउट ना हो करके, इसी और उसी प्रकार तुम लोग नवाब हुसैन की सेवा करो, है ना। इसमें नवाब हुसैन को क्या समझेगा, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव को ये गोस्वामी समझ गए, और वेट इंतजार कर रहे थे कब आएंगे चैतन्य महाप्रभु। तो फिर ये हमने सुना सनातन गोस्वामी पाद के कथा में कि चैतन्य महाप्रभु आए रामकेली, उस समय रामकेली जो था राजधानी था बंगाल का, वो जो नवाब हुसैन था का राजधानी रामकेली था, चैतन्य महाप्रभु ने सब वहां पर सर्वप्रथम वहां पे आए, और वहां पे आए जैसे ही इन गोस्वामी, इनको पता चला दबीर खास, साकर मल्लिक और बल्लभ, बल्लभ का नाम चेंज नहीं किया था लगता उसने, इसका नाम है अनुपम, चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया अनुपम। अनुपम, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा देने के बाद उनका नाम अनुपम पड़ा, तो उसका नाम नहीं चेंज किया था लगता है उनका, छोटे थे शायद, ये दोनों विद्वान थे इसलिए उनका नाम चेंज कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनके नाम चेंज का वर्णन मैंने तो पढ़ा नहीं ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो ये दबीर खास, साकर मल्लिक तीनों भाई गए चैतन्य महाप्रभु, और तीनों भाई नहीं साथ साथ में, वर्णन है कि उस समय जो बल्लभ का ये पुत्र जीव था उसमें छोटा बालक था, छोटा तुम्हारा इतना होगा, छोटा बालक था, और उस समय भी वो साथ में गए, है ना, और मिलने के लिए गए तो ये बात किसी को नहीं मालूम था, है ना, रात्रि के समय में गए मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु के पास, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा ये मुसलमान लोग है, कभी भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, प्रभुपाद जी लिखते थे मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कभी भी, उनका एक लेटर है, पत्र है, वो कभी भी बदल सकते हैं, है ना, असुर असुर और राक्षस का अगर सच में दर्शन है अगर करना है तो मुसलमानों का दर्शन करिए। तो देखिए ना, उनके बीच में चले जाइए, उनके कहाँ, कौन सा नगर, इमरान नगर, आप उसमें बीच में चले जाइए, देखिए आपको कैसा भय होता है, स्वभाव की भय लगने लगा, डर लगने लगा, ऐसा लगेगा कि कौन सा लोक में आ गए। तो इस प्रकार से छुप के ये तीनों लोग और विशेष और साथ में उस बालक श्री जीव भी उस समय बालक थे, और वो भी चल पड़े अपने चाचा और पिताजी के साथ, वो भी निकल पड़े। तो वहां पे वर्णन है कि जब ये दबीर खास, साकर मल्लिक और बल्लभ, ये तीनों जब वहां पे पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि हृदय में तो इतने दिनों से दर्द भरा पड़ा था चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, अब राशि थे, अभी मौका मिला है, तो उन्होंने बहुत ही नम्रता पूर्वक सीधा जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो अपने मुंह में तृण को दबाए हुए थे, ऋण को दबा, नम्रता पूर्वक विनम्रता पूर्वक जब चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही पास में गए तो वहां पे उन्होंने साक्षात उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत मतलब डंडे की तरह गिर जाना, इसको दंडवत बोलते हैं, है ना। एक डंडा खड़ा है उसको गिरा दो, है ना, दंड उसको दंडवत बोलते हैं। डंडे की तरह गिर जाना उसको दंडवत, पांचाग प्रणाम। पांचाग मतलब मस्तक। तो दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, उन लोगों ने, और काफी लंबे समय तक दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने जब तक उनको उठा के आलिंगन नहीं किया तब तक दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, प्रार्थना करने लगे चैतन्य महाप्रभु। बहुत खुशी था उन लोग को, है ना, बहुत लंबा प्रणाम किए। एक बार की घटना है कि मंदिर में एक भक्त आए, बहुत देर तक प्रणाम करने लगे। मैंने सोचा कितने महान है, लेकिन बाद में बहुत देर हो, सोचा कि बहुत टाइम हो गया, मेरा रोड की बात है तो तो मैंने मैंने बोला बहुत टाइम हो गया, इतने देर से दंडवत मार रहे हैं, तो मैं उनके पास गया तो पता चला वो सो गए। तो इस प्रकार से प्रणाम नहीं चाहिए रूप गोस्वामी पाद। ये तीनों लोग बहुत नम्रता विनम्रता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की प्रणाम करने लगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वयं उठाया और अपने गले से लगाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस प्रकार से जो एक भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ना ये जो नम्रता का जो गुण है ना, ये प्रधान होता है उनके अंदर। हम अपने आप को वैष्णव जब बोलते हैं ना, तो हमको याद रखना चाहिए कि वैष्णव मतलब सबसे पहला उसका गुण जो दिखना चाहिए कि वो नम्र होना चाहिए। ये पहला गुण है उसका, ये विशेषता है। वो नम्र रहेगा, वो देखते ही पता चलेगा कितना नम्र है। वैष्णव को देखते ही पता, नम्रता दिखना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को मिले, उस समय बहुत देर तक उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया उठा के, और ये सब जो जितने भी घटनाएं घट रही थी, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने इन लोग का नाम चेंज कर देते हैं, है, दबीर खास साकर, साकर को क्या कर देते हैं सनातन गोस्वामी, दबीर खास को रूप गोस्वामी रूप नाम दे देते हैं, और इधर बल्लभ को अनुपम नाम दे देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा, इन लोग का चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागत होना और चैतन्य महाप्रभु का इन लोग के ऊपर कृपा करना है, ये सारे कौन देख रहा था? वो तो बालक, छोटा बालक जो जीव था, हाँ, बल्लभ के लड़के, वो देख रहे थे सभी जीव पूरा घटना को देखे। और ये जो घटना देखकर ना उनके अंदर ये जो छाप बैठ गया ना, वो छाप पूरे जिंदगी भर नहीं निकला। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि जो ये संस्कार है, जो संस्कार जो होता है ना, वो माता पिता से ही आता है बच्चों में, है ना। संस्कार माता पिता से ही आता है। माता पिता अगर टीवी देखेंगे तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। हम क्या करते हैं, उल्टा होता है, हम टीवी देखते हैं और बच्चे को मना करते हैं, अरे तेरा एग्जाम, तू पढ़ाई कर। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाइए। हम आचरण नहीं करेंगे तो वही चीज वो बालक भी सीखेगा, वो बच्चा भी सीखेगा, वही करेगा बाद में। तो इसलिए संस्कार की जब बात आती है ना, तो ये संस्कार ना सबसे पहले माता पिता से ही प्राप्त होता है, और वो जो संस्कार है ना, उसके बच्चे के जो वो संस्कार हो जाता है बचपन में जो संस्कार हो जाता है ना, इसलिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए माता पिता को घर के अंदर, है ना, जब बच्चे रहते हैं तो, क्योंकि वो बच्चे जो है ना, वो तुरंत ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि वो गलत कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन वो संस्कार जो बैठ जाता है ना बचपन में, और वही संस्कार को लेकर बाद में उसका चरित्र बनता है। बचपन में जो संस्कार हुआ उसी से चरित्र बनता है उसका। इसलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि माता पिता झूठ बोल रहे हैं, तो बालक भी झूठ बोलेगा। वो इतना ऑब्जर्व करता है वो बालक की झूठ बोल रहे हैं करके। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने कई लोग को देखा हूं कि घर में फोन आया, हाँ, तो पिताजी बोलते हैं बच्चों को कि उठाओ फोन और बोलो कि पप्पा नहीं है घर में, और वो बालक उठा के फोन बोलता है कि पप्पा बोल रहे हैं घर में, पप्पा नहीं। तो ऐसा भी होता है। तो झूठ बोलते हैं, तो ये है छोटी सी बात, लेकिन ये संस्कार उसके अंदर बैठता है। फिर वही चीज आगे चल के वो बड़ा झूठ बोलेगा। जब बड़ा झूठ बोलेगा तो हमको भी बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन एक्चुअली मैं तो हमेशा इस बात को बोलता रहता हूं कि बच्चे बिगड़ गए ना, सबसे बड़ा हाथ जो है ना माता पिता का है, सबसे बड़ा हाथ। इसलिए बड़ा होने के बाद अगर बिगड़ गए हो, बात नहीं सुन रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं ना, इसमें अपने आप को ही कोसना चाहिए, क्योंकि हमने उसको उस प्रकार से रखा ही नहीं, संस्कार ही नहीं दिया।
बहुत जरूरी है, देखिए बहुत जरूरी है बच्चों को। ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी हम कहाँ पे भेज रहे हैं, कत्ल खाने में भेज रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ कत्ल खाना है, ऑलरेडी ऐसी जगह पे भेज रहे हैं, लेकिन फिर घर के अंदर कम से कम ऐसा आचरण अपने आचरण से इस प्रकार से सिखाना चाहिए बच्चों को। सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, हमको रहने की जरूरत हो ऐसा। इसलिए बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक, और प्रभुपाद जी विशेष करके इन बच्चों के बारे में क्या बोलते थे पता है, प्रभुपाद जी बोलते थे, बहुत क्रोधित हो जाते थे प्रभुपाद जी, हाँ बोलते थे कि अगर बच्चों को ध्यान नहीं देते हो तो मंदिर में सेवा छोड़ दो, पुजारी की सेवा छोड़ के जाओ, बच्चों को ध्यान दो। प्रभुपाद जी का लेटर है, आप लोग अगर रखेंगे वो है ना लेटर, रोज का रोज है ना कैलेंडर के रूप में आता है ना प्रभुपाद जी का लेटर, पढ़ी है तो उसमें कभी आ जाएगा पढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी कितना, भगवान की सेवा छोड़ दो, इन बच्चों को ध्यान दो। और प्रभुपाद जी इतना ही नहीं, बहुत विशेष प्रभुपाद जी कितने प्रवचनों में बोले कि ये जो बच्चे कोई साधारण बच्चे, अब के जो बच्चे है ना वो साधारण बच्चे है ही नहीं, ये देवलोक से आने वाले बच्चे है। एक कर्मी, एक शराबी व्यक्ति के घर में बच्चा जन्म लेता है ना, वो भी देवलोक से ही आएगा, ये समय ऐसा चल रहा है। इसलिए उन बच्चों को केवल थोड़ा सा सिखाइए, देखिए कितना आपसे कितने आगे बढ़ जाएंगे वो, केवल उनको प्रेरित करिए, थोड़ा सा दीजिए, देखिए कितना आगे बढ़ते हैं, है देवलोक के प्रकट हो रहे हैं देवता लोग। तो प्रभुपा जी बात को बोलते थे हमेशा, कई बार बोला प्रभुपा जी ने, देवता को देवता लोग प्रकट हो रहे हैं अभी, है ना, कलयुग का ये स्वर्ण युग चल रहा है ना, बहुत विशेष है ये 10,000 साल तक ना, बहुत विशेष साल है ये, 10,000 साल के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने गारंटी दी 10,000 साल तक तो इस संस्था को कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा, इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चलता रहेगा 10,000 सालों तक। हाँ तो इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा इसी जन्म में उद्धार होगा कि नहीं, 10,000 साल वापस जाके वापस आके फिर से करके वापस जा सकते हैं, दोबारा मौका है, चांस है दोबारा आने का, मतलब आके भक्ति करके वापस जाने का, कम्प्लीट करके बचा कुछ 10,000 सालों तक मतलब सेफ है हम ऐसा। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो संस्कार है ना, ये सबसे पहला कर्तव्य है माता पिता का, इतना ध्यान रखिए। तो ये देखिए माता ये रूप गोस्वामी पास सनातन वल्लभ ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आदान प्रदान लोग, ये सारे बालक के ऊपर जो छाप बैठा है ना जीव के ऊपर, वो छाप ना उसका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। तो जीव गोस्वामी पाद उसको हृदय में बसा लिया, और दिन रात केवल वही सीन स्मरण आता था उनको, है ना, सोते बैठते उठते वही सीन स्मरण, रात में स्वप्न भी देखते थे वही ऐसा, है ना। कभी कभी हम कुछ चीजों का ज्यादा चिंतन होने लगता है ना तो रात में स्वप्न आ जाता है ना, सर्प का ज्यादा चिंतन आया तो रात में सांप काटेगा, दौड़ाएगा, भाग भी नहीं सकते है ना, कभी काटा है सपने में सर्प, है सपने में भागने के लिए नहीं होता है पता है, हम भागते लेकिन भाग नहीं पाते है, आवाज नहीं निकलता है, भाग नहीं पाते है ना, तो ये सारे तो इस प्रकार से तो दिन रात वो केवल चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते थे, उनको स्वप्न में भी आते थे चैतन्य महाप्रभु, और ये सारे सीन उन्होंने फिर देखा। कुछ दिनों के पश्चात जब रूप गोस्वामी पाद जब जगन्नाथपुरी के लिए निकले, किनके साथ निकले रूप गोस्वामी पाद, शुरुआत सबसे पहले निकल के रूप गोस्वामी पाद ही गए है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे, बस हो गया अभी चैतन्य महाप्रभु के पास, अभी बस चैतन्य महाप्रभु के पास ही जाना है। रूप गोस्वामी पाद निकले, किनके साथ निकले, अनुपम के साथ निकले, लेकिन जाते रास्ते में जाते जाते अनुपम ने क्या किया, उनका शरीर छूट गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया अनुपम ने, बहुत दुख हुआ रूप गोस्वामी पाद का, छोटे थे शरीर छोड़ दिया, और ये अनुपम थे, अनुपम कौन, जीव गोस्वामी पाद के पिताजी। अगली बार ध्यान रखो, अभी दूंगा होमवर्क दूंगा ना, तो ध्यान से सुनो। तो रूप गोस्वामी पाद निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ, और बीच में अनुपम ने शरीर छोड़ दिए, और अनुपम जो कि महान भक्त थे, किनके महान भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे वो, भगवान राम के लिए बहुत वो मर पड़ते थे, बहुत बहुत ऊंची कोटि के भक्त थे। एक बार की घटना है कि रूप गोस्वामी पाद ने उनको बोला कि तुम, अरे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण सारे अवतारों के उद्गम है। तुम अगर कृष्ण की भक्ति करोगे ना तो देखो कृष्ण की भक्ति तो होगा ही होगा और साथ साथ में राम की भी हो जाएगा और सारे लोग का हो जाएगा, इसलिए तुम कृष्ण भक्ति करो। अभी छोटे थे भाई में तो उन्होंने बोला कि बड़े भाई बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, मैं बहुत प्रयास किया उन्होंने कृष्ण का भजन करने के लिए और एक रात में ऐसा बेचैन हुए है पूरा, मतलब राम का केवल कृष्ण का भजन करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए वो रात भर तो उनको नींद नहीं आया और तड़पने लगे और इतना हो गया कि बस अभी खत्म हो जाएंगे, बस अभी मृत्यु हो जाएगी उनकी। और ये सुबह होते ही भाग के रूप गोसाई बात को गए कि मैं अपने प्राणों के अब रख नहीं सकता क्योंकि मैं बिना राम का भजन करे, बिना मैं राम के, मेरा इतना आसक्ति है राम के प्रति ना, मैं उनका नाम लिए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो रूप गोस्वामी पाद में बोला कि नहीं तुम महान भक्त हो, तुम राम का नाम लो। तो बहुत महान भक्त थे। और जब ये जीव गोस्वामी को बालक थे पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि उनको मालूम था कि वो हमारे केवल पिता ही नहीं थे, वो महान वैष्णव थे, है ना, इसलिए बहुत दुख हुआ उनको। तो इस प्रकार से जो संस्कार जो जीव गोस्वामी पाद को मिला था, हाँ उनके ताऊ चाचा जो भी उनके उनके फैमिली परिवार से, वो दिन पर दिन उनके भक्ति को प्रगाढ़ करते गया, दिन पर दिन उनकी भक्ति बढ़ते गई। कभी कभी होता है ना कि साधु संतों के बीच में हम अपने बच्चे को नहीं लाते, अरे कहीं ये भी साधु ना बन जाए, ऐसा नहीं है। ये देखिए भक्त भी बने और ऐसे विद्वान, प्रचंड विद्वान बने कि आज पूरा संसार उनका गुणगान कर रहा है। कितने बड़े विद्वान है संस्कृत, हम जो कि आज पढ़ रहे संस्कृत को इतना बड़ा हरिनामामृत उन्होंने दिया, इतने ग्रंथों की रचना की है ना, महान भक्त होने के बाद भी। इसलिए ये जो है ना सारी चीजें कृपा, अगर कृपा होती है ना भगवान की और वैष्णव की जब कृपा होती है ना तो बोले दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। एक मूर्ख व्यक्ति भी है पुराण ये गुरु पूजा में गाते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हम जब गुरु और भगवान के प्रति जब शरणागत होते हैं ना दिव्य ज्ञान जो है ना वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है हृदय में। तो इस प्रकार से बचपन से ही वो भक्ति करने लगे और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके प्रगाढ़ आसक्ति था बचपन से। कौन कौन भागवत में ऐसे कितने उदाहरण है जो कि बचपन से उन लोगों ने भक्ति किया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि भी बचपन से ही थे, और कौन परीक्षित महाराज, उद्धव जी, ऐसे कई उदाहरण जो कि बचपन से बालक की उम्र से ही वो लोग किए हैं, लेकिन क्या वो लोग विद्वान नहीं हुए? हुए ना। तो इस प्रकार से जो जीव गोस्वामी पाते हैं बचपन से ही वो बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण और कीर्तन ये सब करने लगे। और कृष्ण इनके जो प्रिय विग्रह थे जीव गोस्वामी पाद के वो कौन थे? कृष्ण और बलराम, ये बहुत प्रिय विग्रह थे कृष्ण बलराम उनके, वो कभी छोड़ते ही नहीं थे, उन विग्रहों को लेके अपने साथ में ही रखते थे हमेशा, कभी नहीं छोड़ते थे, है ना। यहाँ तक कि रात्रि में जब सोते थे ना वो विग्रहों का आलिंगन करके ही सोते थे, उनके साथ में ही सोते थे वो, कभी भी कृष्ण बलराम को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा, साथ में लेके सोते थे, इतना प्रेम था उन विग्रहों के प्रति। तो एक ये एक एक दिन की घटना है कि वो विग्रहों को लेकर सोए थे और सोए थे तो रात्रि में उनको स्वप्न आया, है ना, स्वप्न आया और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और स्वप्न में प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिए और उसके बाद भी आशीर्वाद देने के पश्चात और चैतन्य महाप्रभु ने उस समय जब ये स्वप्न उनको आया था तो चैतन्य महाप्रभु अपना लीला समाप्त करके जा चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ये जब स्वप्न आया तो चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हुए उनके स्वप्न में और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये आदेश दिया कि मैं तुमको नित्यानंद के शरण में भेजता हूँ। और उस समय नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु चले गए थे लेकिन नित्यानंद प्रभु थे, और चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया जीव को स्वप्न में प्रकट होके तुम नित्यानंद की शरण ग्रहण करो, है ना। तो इस प्रकार से जब उस स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, उसके बाद तुरंत ही वो दोनों कृष्ण और बलराम बन गए। कृष्ण बलराम क्योंकि कृष्ण बलराम के प्रति इनका आसक्ति इतना ज्यादा था, है ना, तो कृष्ण बलराम के रूप में भी दर्शन दिया उन लोगों ने, और उसके बाद जब उनकी नींद खुली, क्योंकि उन्होंने पहले से विचार किया था कि मैं इन गोस्वामियों को, रूप और सनातन गोस्वामी को, उनको मदद करने के लिए, उनके संरक्षण में रहने के लिए मैं कहां जाऊंगा, वृंदावन में जाऊंगा, पहले से विचार किए हुए थे। लेकिन चेतन महाप्रभु का भी आदेश, क्या आदेश, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करो, और इसलिए उन्होंने क्या किया, वृंदावन न जाके कहां गए, नवदीप गए, नवदीप धाम। एक्चुअली नवदीप धाम ना, एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण औदार धाम बोला जाता है नवदीप धाम को, है ना। वहां पे पापी से पापी जीव का उद्धार होता है। एक्चुअली वृंदावन में जाके अगर पाप कर्म किए, है ना, भौतिक भोग किए वहां पे जाके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको बंदर का शरीर मिलेगा, उसको बंदर बनेगा अगला जन्म में, अगर भोग दृष्टि वहां पे रहा, है ना। वहां अपराध होता है, अपराध बहुत ज्यादा होता है वृंदावन में। इसलिए कभी भी वृंदावन जब जाते हैं ना, तो भक्तों के संग में जाके कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते 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 जो भी दो चार दिन रह के वापस आ जाना चाहिए। लेकिन नवदीप अगर जाते हैं तो हम काफी दिन वहां पे रुक सकते हैं चेतन महाप्रभु की कृपा, क्योंकि वो पापी से पापी जीवों का उद्धार किया वहां पे, पापी लोग का। तो इस प्रकार से ये आदेश को प्राप्त करके जीव गोस्वामी पाद कहां पे, नवदीप के लिए निकल पड़े। और वहां पे बहुत सुंदर उनका जो नवदीप में वो नित्यानंद प्रभु के, उनके जैसे ही उनके शरण में गए, उनको प्रणाम किया, और नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण जो है इस जीव के ऊपर, अपना चरण को रखा उन्होंने जीव गोस्वामी पाद के ऊपर। और उसके बाद देखिए कितना महत्वपूर्ण बात, कि स्वयं नित्यानंद प्रभु ने लेकर, जीव गोस्वामी को लेकर पूरा नवदीप मंडल की परिक्रमा करवाया, है ना, पूरा नवदीप मंडल का। सबसे पहले वो सची माता के पास जाते हैं, विष्णुप्रिया, चेतन महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया, उसमती, चेतन महाप्रभु चले गए थे, उनका दर्शन करवाया, सची माता का दर्शन करवाया, योगपीठ के पास गए, सची माता इन लोग का दर्शन कराया सबसे पहले। और उसके बाद पूरा नवदीप में जितनी भी चेतन महापुरुष की लीला सलिया थी, सबका दर्शन स्वयं नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी पाद को कराया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी पाद को पूरा नवदीप मंडल परिक्रमा कराया। इस नवदीप मंडल परिक्रमा का एक बुक है, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से लिखे हुए है, नवदीप मंडल परिक्रमा। तो उसके बाद पूरा दर्शन नवदीप मंडल का कराने के पश्चात नित्यानंद प्रभु का अभी आदेश, अभी तुम जाओ कहां पे जाओ, वृंदावन। आदेश का वृंदावन में जाके क्या करना है, रूप गोस्वामी पाद और जीव सनातन गोस्वामी पाद की शरण ग्रहण करो, और उनके संरक्षण में रहो, उनके संरक्षण में रह के और उनकी सेवा करो, और वहां पे उनके कहे अनुसार उनको जो भी बोल रहे हैं उनको मदद करो। लेकिन उससे पहले तुम जब जाओगे तो रास्ते में बनारस वाराणसी आएगा, और तुम वाराणसी में सबसे पहले जाओ, वहां पे मधुसूदन वाचस्पति नाम के ब्राह्मण, जो वैष्णव ब्राह्मण है और बहुत विद्वान, वो भी थे, वो पाठशाला चलाते थे, भागवत पाठशाला, तुम उनके पास जाना, पहले वहां पे शिक्षा को ग्रहण करो, नित्यानंद तो जीव गोस्वामी पाद को बोलते हैं, वहां पे जाकर तुम शिक्षा को ग्रहण करो, और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जाके उन गोस्वामी की सेवा में लग जाओ। इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु का आदेश, और वो जीव गोस्वामी क्या किए, वो मधुसूदन वाचस्पति के इधर गए, और वहां पे पाठशाला में उन्होंने भागवत को सीखा। पहले से ही वो विद्वान थे एक्चुअली, और वो कोई इस जगत के तो थे नहीं, नित्य पार्षद थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु का आदेश का पालन करते हुए वहां पे जाकर पाठशाला में वो सीखे। लेकिन हुआ क्या, मधुसूदन वाचस्पति को लगा कि, क्योंकि वो श्रुतिधर हो गए थे, श्रुतिधर थे, हाँ, जनरली ऐसा होता है, लोग कितना पढ़ाई करते हैं, क्या करते लिखते हैं, बहुत मुश्किल से याद होता है, एग्जाम चल रहा है तो पता चल रहा है ना, हाँ, कितना मुश्किल होता है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद जो भी सुनते थे ना, और उनको स्मरण हो जाता था, याद हो जाता था, हाँ, श्रुतिधर। ये देख के ना मधुसूदन वाचस्पति बहुत खुश थे और बहुत आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए उन्होंने इतना आश्चर्य होकर क्या किया, पूरे बनारस में जीव गोस्वामी की महिमा का व्याख्यान कर दिया। पूरे बनारस में सब लोग जीव की महिमा को जानने लगे, उनका कि इतने प्रचंड विद्वान है, केवल श्रुतिधर, केवल सुनने मात्र से सब याद हो जाता है उनको। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, भागवत सीखे, और उसके बाद फिर वह कहां पे आ गए, वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आकर सनातन गोस्वामी पाद को मिले। सनातन गोस्वामी पाद को मिलने के पश्चात सनातन गोस्वामी पाद ने उनको रूप गोस्वामी पाद के हवाले कर दिया, कि आप इनको, इनका केयर करिए, आप दीजिए इनको दीक्षा। मतलब जीव गोस्वामी पाद किसके शिष्य है, रूप गोस्वामी पाद के, स्वयं सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद के शरण में जीव गोस्वामी को दे दिया। अभी देखिए, अभी बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ से मिलती है कि जीव गोस्वामी पाद ने इन गोस्वामियों का, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद का, कितनी सुंदर तरीके से सेवा पूजा किया वहां पे रहकर। तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद का शरण ग्रहण किए जीव गोस्वामी पाद जीव, और तुरंत ही रूप गोस्वामी पाद ने, उन्होंने क्या किया, मैं उन्होंने तुरंत उनको दीक्षा नहीं दिया, है ना, मना किए उनको, क्या किया, दीक्षा न देकर सबसे पहले उन्होंने, हालांकि वो जानते थे महान वैष्णव है, महान वैष्णव है, प्रचंड विद्वान, अभी तो पाठशाला से निकल के आए, है ना, इतना बड़ा विद्वान थे, तो इतना बड़ा ज्ञान था, विद्वान थे और इतने महान भक्त थे, ये जानते हुए भी रूप गोस्वामी पाद ने तुरंत उनको दीक्षा नहीं दिया, हालांकि उनके शरणागत करा दिए सनातन गोस्वामी पाद, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने दीक्षा नहीं दिया, उनको सेवा में लगाया। और क्या सेवा में लगाया, बहुत छोटे साधारण सेवा में लगाया, साफ सफाई का सेवा दिया, टॉयलेट धोने, टॉयलेट सफाई करने का सेवा दिया, है ना, और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद के कभी चरण चरण दबाते थे, चरण दबाने की सेवा मिला था, इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारी सेवाएं दिया, और विशेष करके वो रूप गोस्वामी पाद के लिए कलम बनाया करते थे, बहुत मुश्किल होता था पहले के समय में कलम बनाना, कौन कौन कलम बनाया बताइए, नहीं बनाया, कोई नहीं जानता कलम, मैंने कोई पढ़ा है, अभी नहीं, कोई नहीं, हाँ मैं जब भी हम पढ़ते थे तो कलम से ही पढ़े एक्चुअली, हाँ वो कलम बनाने के लिए कितना मेहनत करते थे बताए हम लोग अभी कलम के लिए जाके किधर, कहाँ, जहाँ नदी हो और जहाँ तालाब हो वहां पे ना एक पेड़ उगता है, उसको नरकट बोलते है, नरकट उसका नाम है, तो हम जाके उसको तोड़ के लाते थे, तोड़ के लाते थे और ब्लेड से ना उसको बनाते थे, है ना, कलम के फाउंटेन पेन होता है ना, फाउंटेन पेन के जैसा बनाते थे, और मार्केट से स्याही का ये लाते थे, पाउडर लाते थे और उसको घोलते थे, घोल के उसमें नरक उसको कलम को डुबा कर फिर लिखते थे, ये मैंने मैंने मैं हमारे स्कूल में था जब ये पढ़ रहे थे, तो लेकिन कुछ ही दिन था, उसके बाद तुरंत ये ब्लैक बोर्ड आ गया और चौक आ गया, सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक यूज करने लगे, फिर उसको लेके जाते जाते थे स्कूल में, तो ये हमने किया है इसको इस्तेमाल। तो जीव गोस्वामी पाद कलम बनाते थे, हाँ क्योंकि बहुत टाइम लगता था कलम बनाने में, क्योंकि गोस्वामी क्या करते थे, ग्रंथों की रचना करते थे ना, तो उनके लिए स्याही और कलम बना के बराबर टाइम पे दिया करते थे, तो ये छोटी मोटी बहुत सारे सेवा को वह करते थे, उसमें ऊंच नीच हमको कभी कभी होता है ना कि हमको कोई ऐसा झाड़ू मारने की सेवा जब मिल जाती है तो हमारे मन में विचार आ जाता है, अरे क्या प्रभु जी ने दे दिया झाड़ू मारने की सेवा, कितना छोटा, और मैं कुछ इतना बड़ा काम कर सकता था लेकिन यही सेवा मिला, है ना, कभी कभी ऐसा हमारे मन के अंदर विचार होता है, लेकिन कभी भी हमको इस प्रकार की जो भेद बुद्धि है सेवाओं के बीच में, क्योंकि भगवान के नजरों में सेवा मतलब सब समान है, चाहे वो साफ सफाई की सेवा हो, चाहे भगवान के स्वयं जाके आरती करने का सेवा हो, चाहे जाके प्रवचन दिलाने की सेवा हो, चाहे कुछ भी पढ़ाने की सेवा हो, सब भगवान के नजरों में सब सेवा, सेवा मतलब समान है ना, जो उसमें भेद बुद्धि करता है वो उसका पतन होता है एक्चुअली, इसलिए भेद बुद्धि सेवाओं में कभी करना ही नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी पाद हालांकि इतने प्रचंड, अब यहां से सोचिए कि विचार करिए कि जीव गोस्वामी पाद कितने विद्वान थे, महान वैष्णव थे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, टॉयलेट धो रहे हैं, है ना, साफ सफाई कर रहे हैं, कितने छोटी छोटी तुच्छ सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति, हम विचार कर तुलना करिए हमारे से, कभी हमको कुछ सेवा जब कभी ऐसा मिलता तो हम उसमें कितना भोज बुद्ध, अरे उसको तो ये मिल गया मेरे को ये नहीं मिला, और उसको ये मिला उसको ये मिला, ये सारा चीजें सोचते हैं, है ना, छोटी छोटी सेवा, जितना छोटी, विशेष करके क्लीनिंग और झाड़ू मारने की जो सेवा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, इससे हृदय का मार्जन होता है एक्चुअली, है ना, जब हम न्यू भक्त में ज्वाइन किए थे उस समय मीरा रोड में, तो सबसे पहले हमारा 1.5-2 सालों तक एक ही सेवा था, कुछ दूसरा सेवा नहीं था, 2 टाइम मंदिर धोना और भगवान का जो बर्तन निकलता उसको डेली धोना, यही सेवा, सुबह शाम दोनों, केवल घिसते रहो, बहुत कंटाल आता था, कंप्लेंट भी करते थे कितना हाथ घिस, वो फिर उंगली में हाथ घिस जाता था, क्योंकि पीताम्बरी से होता है रोज धोएंगे ना तो सड़ जाता है सब, तेज हो जाता तो फिर वो पांचों उंगलियों के लिए रबड़ लाके दे देते थे, लेकिन घिसना तो पड़ेगा न्यू भक्त ट्रेन में घिसना पड़ेगा, पांचों उंगली में रबड़ लगाते थे, रबड़ लगा के फिर धोते थे, तो 1.5 सालों तक हमको यही सेवा था, 2 टाइम बर्तन धोना भगवान जी का, और उसके बाद मंदिर साफ करना है, डेढ़ साल होता है ट्रेन यही, क्योंकि जब तक हम मार्जिन नहीं होगा ना, ये जो मार्जिन है जितना अच्छा चमकाया, जितना अच्छा चमकता है ना उतना क्लीन होता है अंदर, है ना। तो हमारे जो निभक्त इंचार्ज थे ना वो आके चेक करते थे चमक रहा है कि नहीं, है चांदी चमक रहा है कि नहीं, देखते तो बरता ना अच्छा धोया, मतलब ठीक है चलो प्रगति हो रहा है तुम्हारा। इस प्रकार से जो सेवाओं में जो भेद बुद्धि है ऊपर नीचे का, वो कभी भी हमको नहीं करना चाहिए। हमारे क्यों, जब ये गुरुजन हमको जब सेवा देते हैं ना, तो हमारा हृदय का जो मार्जन होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होने लगती है ना, मार्जन होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही नम्र और सरलता से जीव गोस्वामी पाद इतना विद्वान होते हुए भी इस प्रकार से बहुत ही नम्रता से उन्होंने सेवा किया। तो भगवान कभी कभी प्रार्थना, ये हमारे यहाँ परीक्षा लेते हैं, तो भगवान को परीक्षा लेने के लिए कोई कठिनाई थोड़ी ना है, भगवान अंदर परमात्मा के रूप में है ना, तो हमारा परीक्षा कहाँ, अंदर ही अंदर कर लेते हैं वो परीक्षा लेते हैं, है ना, कितना प्योर है कितना नम्र है, बाहर से अंदर से है सारा, तो अंदर ही भगवान परमात्मा के रूप में, उनको कहीं और बाहर से कठिनाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कभी भी भक्ति मार्ग में ना जब सेवा मिलता है केवल हाँ 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 होना चाहिए, और भौतिक चीजों में ना 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 होना चाहिए कभी भी, हाँ कभी ना होना ही नहीं चाहिए, हाँ ही होना चाहिए भक्ति मार्ग में। तो इस प्रकार से बहुत ही नम्रता पूर्वक, क्योंकि हम करते क्या, अभी रोज महामंत्र का जब करते क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मतलब राधा रानी, राधा रानी से प्रार्थना करते कि कृष्ण की सेवा में लगाओ, यही दिन भर यही जब करते हैं हम, जो भी 16 माला जब करते क्या जब करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करो कृष्ण की सेवा में लगने के लिए। लेकिन जब सेवा मिलती है तो बस अरे क्या मिल गया, बोझ लगने लगता है, इतना ज्यादा दीजिए कैसे कर पाऊंगा, और दिया भी तो कैसा सेवा दिया, क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग बोलेंगे अरे तुम जा, तुमको ये सेवा दे दिया उसको तो इतना बड़ा दिया, ये सब वेद बुद्धि करने लगते हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे एक्चुअली हमारे जीवन का श्रीमद भागवत में वर्णन है कि संसिद्धि हरितोषणम, है ना, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, संसिद्धि हरितोषणम, उनकी संतुष्टि के लिए हमारा जीवन होना चाहिए पूरा। तो इस प्रकार से रूप जीव गोस्वामी पाद वो बहुत सुंदर तरीके से वह क्या किए, रूप गोस्वामी पाद की सेवा में लगे रहे। एक दिन की घटना है, 9:30 बज गया, एक दिन की घटना है कि वृंदावन में एक बहुत बड़ा विद्वान, प्रचंड विद्वान, एक बहुत अहंकारी एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था रूप नारायण, बड़ा अच्छा नाम था रूप नारायण लेकिन जितना अच्छा नाम उतना ही अंदर से घमंड भरा हुआ था, है ना, विद्वान था बहुत, क्या बोलते हैं, दिग्विजय पंडित, दिग्विजय पंडित था वो, मतलब सब लोग को पूरा जितने भी विद्वान थे सबको हराते हुए, उसके पास एक ये था विजय पत्र था उसके पास। वो क्या करता था, विद्वानों के पास जाता था और बोलता है कि मेरे से तर्क करो, और हारने के बाद बोलता था यहाँ साइन करो, बहुत सारे लोग को विद्वानों का साइन करा के लेके घूम रहा था वो, हाँ सबको पराजित करते 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 सबको पराजित किया, कितने लोग को पराजित करते करते जब वो वृंदावन में, उसको पता चला कि वृंदावन में दो महान संत है रूप सनातन, है ना, बहुत प्रचंड विद्वान है ये रूप सनातन, प्रचंड विद्वान है। और जब वो पहुंचे वृंदावन में तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास गए, बोले कि मैं पूरे विद्वानों को पराजित करके आया, ये देखो मेरे पास विजय पत्र है, हाँ सब लोगों ने साइन किया है, क्या तुम भी मेरे साथ आर्गुमेंट करना चाहते हो, करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो लो इधर साइन करो कि तुम हार गए। और कितने लोग तो उनके इस विद्वत्ता को देख के ना वो आर्गुमेंट करते ही नहीं थे, क्या करते थे, साइन कर देते थे, भाई हार रहे क्यों, बदनाम, पहले से ही साइन कर दो ना, आर्गुमेंट क्यों करने का। और रूप और सनातन के पास जब पहुंचे ये रूप नारायण, तो रूप और सनातन ने, रूप गोस्वामी पाद ने देखते ही पहचान गए कौन है, क्योंकि जो एक शुद्ध वैष्णव होते हैं ना उनकी जो दृष्टि होती है ना वो एक्सरे दृष्टि होती है ना, एक्सरे देखते हैं सारे हड्डी में कुछ चोट लग गया तो क्या एक्सरे करते हैं ना, तो मशीन क्या करता है, वो कंकाल हड्डी को बराबर फोटो देता है उसका है ना। तो ये शुद्ध भक्त जो होते हैं ना उनकी दृष्टि जो है ना एक्सरे दृष्टि होती है, इसलिए कभी भी हम जो महान वैष्णव के पास जब जाते हैं ना तो महान वैष्णव हमको देखते ही वो समझ जाते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि मैं बहुत गुरु महाराज की सेवा में रहा, तो कभी कभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंप्लेन को लेके जाते थे ना, बोलते जैसे ही शुरुआत करते थे महाराज बोलते आई नो मैं जानता हूँ बोलने ही नहीं देते थे, मैं तो जानता हूँ। तो और कभी कभी ऐसा हम चुप हो जाते थे जब कभी कभी, तो महाराज को ऐसा नहीं क्यों इसको लगता है होगा, लगता है कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ करके, महाराज वो प्रॉब्लम से बताते मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप मैं आप चिंता मत करो, आप ये करो सोल्यूशन बता देते, तुरंत समझ जाते थे तुरंत। कभी कभी हम अंदर सोचते रहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि एक्सरे दृष्टि होती है, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। ये मैंने कितनी बार ऐसा अनुभव किया हूं, कितनी बार है ना। तो इसलिए ये जैसे ही ये रूप नारायण जो रूप गोस्वामी पाद के पास गया, रूप गोस्वामी ने दृष्टिपात किया तो उसका पूरा एक्सरे निकल गया। अरे ये तो घमंडी है, इसके अंदर अहंकार फूट फूट के पड़ा है, इसके साथ आर्गुमेंट करेंगे ना टाइम क्यों खोटे करने का, क्यों बिगाड़ने का टाइम है ना, साइन मारो ये निकलेगा है ना। उनके पास खुद को टाइम नहीं था इतने ग्रंथों को लिखना, भगवान की सेवा करना, तो इसमें क्यों इस बीच में पड़े है ना। हम अगर उस जगह पर रहते तो अगर कोई आके बोलता अरे तुमको तो कुछ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा मालूम ही नहीं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया नहीं मालूम है, आप बताए चार चीजें बताएंगे और आर्गुमेंट करने लगेंगे, ये सारी चीजें करने लगते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है ना वो कभी भी आर्गुमेंट में जाता ही नहीं, अपने आप को ठीक है आप श्रेष्ठ। तो रूप और सनातन ने उसके इस विजय पत्र के ऊपर साइन कर दिया, ठीक है आप जीते। और वो फिर वो तो उसके तो खुशी की सीमा नहीं रहेगी, अभी तो सबसे इतने बड़े प्रचंड विद्वान का साइन हो गया, इतना अहंकार इतना उदाह वो फिर से निकला आगे। लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि मैंने सुना हूं कि इसके ही फैमिली मेंबर एक और है, उसका जीव नाम है, चलो उसको भी अभी जा ही रहे तो उसका भी काम खत्म करके ही जाते हैं। हालांकि उसको ऐसा था कि उसके पास क्यों जाने का, ये जो दोनों महान थे इनका तो साइन हो ही गया, लेकिन फिर भी उसने ऐसा विचार किया कि जा ही रहे थे, जाते जाते उसका भी साइन लेते ही जाते बचा कुचा क्यों उसको छोड़ने का। जीव के पास गए और जीव के पास बोले देखो तुम्हारे जो दो महान गुरु है उनका साइन देखो, इधर साइन देखो, उनको मैं पराजित करके आया है ना, अभी तुम भी शांति से इधर साइड में साइन कर दो तो जीव को साइन पाने देखा, अरे तो कैसे साइन कर दिया इसको, एक मूर्ख है इसको पता नहीं है कि वो कितने महान वैष्णव है, ये अपनी नम्रता के नम्रता वश उन्होंने इतना तो नम्र है वो, इस नम्रता के वशीभूत होकर उन्होंने साइन किया, इसको मूर्ख को पता नहीं कितने शुद्ध वैष्णव भक्त है। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुरंत क्या किया बोला कि मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, मैं आर्गुमेंट करूंगा है ना। कभी भी एक जो भक्त होता है ना दूसरे भक्तों का जो है ना, हाँ वो आ गया, सुनो तो कथा पूरा सुना नहीं ना दीदी, तो सुन सुन तो उनके साथ आर्गुमेंट करने का सोचे, चलो मैं तुम्हें, और सारे ब्राह्मण आगे बड़े बड़े जो विद्वान थे सब इकट्ठा हो गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं आते, उन लोगों के पास ऐसे भी समय नहीं था तो गए, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि इस प्रकार का कुछ गोष्ठी है, वो गोष्ठी उन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गोष्ठी बैठाया गया। तो उस समय कई दिनों तक हफ्तों तक आर्गुमेंट चला हफ्तों तक चला, और उसके बाद क्या हुआ फिर सारे अन्य विद्वान ब्राह्मण जितने भी लोग थे सब लोगों ने यह प्रूफ के साथ किया कि जीव गोस्वामी जीत गया, जीव जीत गया, तुम जाओ। और वो बड़े शर्मिंदा होकर एकदम टूट गया उसका सारा साइन करके पराजित हो गया और करके अभी उसका घमंड टूटा और वो निकल पड़ा। और उसके बाद जब रूप जीव गोस्वामी पाद जब आए किनके पास, रूप गोस्वामी पाद के पास, और आके उन्होंने बोला अरे आप लोग साइन कैसे कर दिए, ऐसा कैसे साइन कर दिए, वो इतना घमंड को लेके भर के पूरा घूम रहा था आप लोग का साइन, मेरे को सहन नहीं हुआ और मैंने पूरी घटना को बता दिया उन्होंने। और जैसे ही इस घटना को देखे सुने रूप गोस्वामी पाद तुरंत ही इतना उनका दिमाग खराब हुआ जीव गोस्वामी पाद के ऊपर, बोले कि तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले, वो तो अहंकार था ही उसके अंदर, वो तो उसकी विद्वत्ता का अहंकार था ही ना, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे पास तुम्हारे लिए भी वही है, तुम भी अपनी विद्वत्ता को तुमने प्रकट किया, क्या जरूरत थी क्यों समय बर्बाद किया, जरूरत ही नहीं था। इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद बहुत डांटने लगे। हालांकि रूप गोस्वामी पाद जानते थे कि जो गोस्वामी पाद के वो महान वैष्णव है करके, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रूप गोस्वामी पाद हम जैसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद को पता था कि जीव गोस्वामी जो है ना गलत नहीं किया है, वो प्रचंड विद्वान है और उसके बाद महान वैष्णव है, भक्त है और नित्य पार्षद है, लेकिन उनके माध्यम से, क्योंकि उनके उनके शिष्य को स्वीकार किए थे जीव गोस्वामी पाद, इसलिए उनके माध्यम से उन्होंने हम जीवों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक वैष्णव को ये आर्गुमेंट में फंसना ही नहीं चाहिए। हाँ, नम्रता पूर्वक उनको वहां से निकल रहा है। बहुत डांटे, इतना डांटे, इतना डांटे कि बोले कि तुम इस प्रकार की मनोवृत्ति, इस प्रकार की भावना जो है ना, तुमको वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, तुम भाग जाओ वृंदावन से, इधर से डांट के बोलने लगे। हाँ, सोचिए कि अगर ऐसे हमारे कोई गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कोई डांटे और बोले कि अरे मैंने इतना सेवा किया, इतना बड़ा काम किया है ना उनको तो ये, लेकिन हमको मिला क्या, बाद में डांट खाने के लिए मिला उल्टा। लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने कभी भी ऐसा सोचा नहीं, उन्होंने शिरोधार किया, मैंने गलत हूँ, बहुत रोने लगे, मैं गलत हूँ करके वो निकल गए वृंदावन से, काफी दूर निकल गए। निकल के जाकर उधर अपने आप को बहुत पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने लगे। और तो कुछ दिनों के पश्चात देखिए, वैष्णव जो है ना, वैष्णवता जो है ना, जब वैष्णव की बात करते हैं ना, ये वैष्णवता जो है ना सही और गलत से परे है। एक्चुअली इस संसार का जो हम कुछ चीजों को सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं ना, इन दोनों चीजों से परे है वैष्णवता, है ना। एक बंगाल के एक कवि हुए, उनके मन में ऐसी इच्छा है कि मुझे भी वैष्णव बनना है, वैष्णव बनना है। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव बनने के लिए क्या करना है, तो जब वैष्णव समाज में आए, वैष्णव समाज में आए तो उनको क्या बोला गया, कितृणाद अपि सुनि चेना तरोर अपि सहे सुनना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदारी। और जैसे ही बोला कि कितृणाद अपि सुनि चेना, तृण से भी अधिक नम्र, पीड़ से भी अधिक सहनशील, और अपने मान के कोई परवाह न करके दूसरे को मान देना, अरे ये तो नहीं हमसे होता। उन्होंने वैष्णव बनने का इच्छा त्याग दिया, ये नहीं हो सकता है। वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक दिया है ना, त्रिणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना, ये तीन बातें जो है ना, कभी कभी हम विचार करते हैं कि सतत सतत अगर हरिनाम लेना है, और हरिदास ठाकुर के पास टाइम सुनते हैं, हरिदास ठाकुर के पास टाइम सुनते हैं कि किस प्रकार से वो 22 घंटे हरिनाम का जप करते थे। ऐसे कितने सारे महान वैष्णव भक्त आज भी है जो कि 64 माला का जप करते हैं, 32 माला का दिन भर हरिनाम लेते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है पता है। ये तीन चीज अगर अपना लो तो संभव 100% हो जाएगा। नो सेमिनार, जपा सेमिनार, नो चैंटिंग सेमिनार, कोई करने की जरूरत नहीं है। त्रिणादपि सुनिचेना, तृण से भी अधिक नम्र होना, मतलब तृण के ऊपर अगर हम पैर रखते तो कुछ बोलता है नहीं। मान लो जी मैं यहां से निकल के जा रहा हूँ, किसी को एक लात मार के निकलू तो कैसा लगेगा, क्या करेगा वो पता नहीं, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। तो तृण से भी अधिक नम्र होना, तृण से भी अधिक नम्रता, और क्या, पेड़ से भी अधिक सहनशील। पेड़ को काटा जाता है फिर भी नहीं कुछ बोलता है ना, पेड़ से भी अधिक सहनशील। और अमान, अपनी मान और की इच्छा न रखते हुए क्या दूसरों को उनका गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना, ये एक्चुअली वैष्णव है। तो इसको हमको, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो इंस्ट्रक्शन, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा कुछ हमको, बहुत सारा ग्रंथ और आदेश नहीं दिया, उन्होंने 8 श्लोक केवल दिए। उसमें हम, हमारा जन्म होके मृत्यु हो जाएगा उसको पालन करने में, उसमें विशेष करके जो त्रिणाद अभी सुनिचेना श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु बोले कि वैष्णव का आभूषण है, उसको गले में बांध के रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हम रोज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके विषय में मनन कभी नहीं करते हैं, तो ये वैष्णवता। तो जीव गोस्वामी पाद ने बहुत ही उनको नम्रता पूर्वक अपने रूप गोस्वामी, अपने गुरु के इस डांट फटकार को उन्होंने स्वीकार किया, शिरोधार्य करके निकल गए। हो जाके तड़प के उधर रोने लगे, बहुत पाशा मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, गुरु के चरणों में ये कर दिया कर दिया करके बहुत तड़पने लगे। कुछ दिनों के पश्चात सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के पास आते हैं और बोलते हैं कि रूप, मुझे लगता है कि चेतन महाप्रभु के जो आदेश था, चेतन महाप्रभु के आदेशों को बराबर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। रूप गोस्वामी पाद को लगा चार नहीं कर रहा हूँ, तुरंत नम्र हो गए, बोले कि आप बताइए मैं कौन से आदेशों को नहीं पालन कर रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। ये शिक्षा, ये शिक्षणीय चीज है, देखिए है ना, तुरंत एक्सेप्ट किया उन्होंने। तुरंत अच्छो के बताइए, कभी हमको कोई गलत बोलता है ना, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वैष्णवता में ऐसा है कि कोई मैं गलत नहीं हूं ना, अगर वो हमको गलत बोल रहा है तो ठीक है मैं गलत हूँ, ये हमारा वैष्णवता है। हमको तुरंत नम्र बन जाना चाहिए, पहले स्वीकार करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत स्वीकार किया और बोले कि क्या क्या बताइए, क्या मैंने क्या नहीं पालन कर रहा हूँ, नहीं तुम बताओ कौन कौन से पालन करो आदेशों का। तो बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को उनका लिए जो था शिक्षा को बताने लगे। और जब उसमें जब जीव दया की बात जब आई तो हाँ हाँ जीव दया बराबर, तुम ये जीव दया नहीं कर रहे हो। रूप गोस्वामी बात तुरंत समझ गए, सभी जीवों के ऊपर तो कृपा करे लेकिन अपना जीव उधर तड़प रहा है। तो रूप गोस्वामी बात तुरंत जाके जीव गोस्वामी को लेकर आए, वापस लेकर आए। फिर से उन्होंने जीव गोस्वामी बात को बहुत तुरंत ही बहुत सारे सेवाओं में लगा दिया। अभी दूसरी बार एक बार और ऐसा हो गया, दूसरी बार थोड़े दिन के बाद कुछ दिनों के बाद अभी बल्लभाचार्य नामक एक वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु से एक्चुअली सीनियर थे चैतन्य महाप्रभु से, वो बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से। तो बल्लभाचार्य वृंदावन में आए, महान वैष्णव थे बल्लभाचार्य, बहुत सारे उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ ना उनका बहुत सारे वार्तालाप भी हुए हैं। तो बल्लभाचार्य जब वृंदावन में आए रूप गोस्वामी पाद को मिले, तो रूप गोस्वामी पाद उसमें बहुत सुंदर एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। कौन से ग्रंथ का? भक्ति रसामित सिंधु। भक्ति रसामित सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है, प्रभुपाद जी इसको बोलते थे इस्कॉन लॉ बुक ऐसा। और उसमें क्या है पता है? यही है, नम्र बनो मार खाओ रहो, ये सब सारे चीज यही सब शिक्षा है। अरे एकदम वैष्णव भक्ति रसामित सिंधु, भक्ति को अगर वर्धन करना है तो भक्ति रसामित सिंधु में जो लिखा है उसको अच्छे से पालन करो, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लॉ बुक बोले हैं। प्रभुपाद जी भागवत चैतन्य सारे को लॉ बुक नहीं बोले, क्या इसको बोले? भक्ति रसामित सिंधु को लॉ बुक बोले। तो वो ग्रंथ को लिख रहे थे रूप गोस्वामी पाद जब बल्लभाचार्य आए। तो जैसे ही बल्लभाचार्य आए तुरंत ही, क्योंकि सीनियर है वो, तुरंत ही उन्होंने मर्यादा पूर्वक तुरंत उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उस ग्रंथ को दिया, प्रभु मैंने इस ग्रंथ को लिख रहा हूं, इसमें कोई अगर त्रुटि हो तो कृपया आप इसको क्या करिए, समाधान सही करिए। तो इस प्रकार का जब रूप गोस्वामी पाद ने बोला, बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने बताया, क्योंकि उनको मर्यादा पता था किस प्रकार से हमको वैष्णव के समाज में रख के किस प्रकार से हमको करना चाहिए था, है ना। कभी कभी मान लीजिए कोई हम ग्रंथ लिख रहे हैं, हम दूसरे को देंगे करेंगे तो इसमें चेंजेस करो, हमको कभी भी पसंद नहीं आएगा, है ना। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने बल्लभाचार्य को दिया और बल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर से बोला कि हाँ यहाँ पे एक ये मिस्टेक है और इसको चेंज करना चाहिए। तभी चेंज करने के लिए कौन चेंज करेगा? जीव गोस्वामी पाद, क्योंकि ये लोग लिखते थे प्रकाशित जीव गोस्वामी पाद ही करते थे, उसको करेक्शन करते थे जो भी है, करेक्शन करके बराबर तरीके से करके फिर प्रकाशन में करते थे। तो बल्लभाचार्य ने क्या किया, जीव गोस्वामी पाद के पास लेके गए। जीव गोस्वामी पाद के पास लेके गए तो जीव गोस्वामी पाद ने उनका बहुत सुंदर तरीके से आदर किया, क्योंकि महान वैष्णव भी थे। और जीव गोस्वामी पाद ने बड़ी नम्रता से, अभी विद्वत्ता से नहीं, बड़ी नम्रता से बातचीत कर करके ये आभास करा दिया बल्लभाचार्य को कि रूप गोस्वामी पाद ने जो लिखा है वो सही है, गलत नहीं है। और बल्लभाचार्य ने भी उनके बातों को सुनते सुनते देखते देखते उधर उधर बड़ा आश्चर्य हुआ, सच में महान वैष्णव है। उन्होंने उसकी वैष्णवता को पहचानने की, सच में महान वैष्णव है और मैंने जो सोचा ना सच में गलत है। और फिर से उस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी पाद के पास जाते हैं, बोलते कि प्रभु आपने जो लिखा है वो सत्य है, मतलब उसमें गड़बड़ी नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहते प्रभु आपने अभी अभी बताया हम कर वो चेंजेस करने के लिए, हम कर वो चेंजेस हो जाएगा, आप क्यों अचानक क्यों अपने मन को बदल दिया आपने। तो बल्लभाचार्य ने बोला कि नहीं, वो जीव ने मुझे समझाया बहुत अच्छे से, बताया महान वैष्णव है। और जैसे ही जीव बल्लभाचार्य तो चले गए, और जाने के बाद जीव को स्वामी फिर से कहा बुलाओ जीव को, इतना डांटे क्या तुमको ये वैष्णवता पता नहीं है, बड़े और छोटे में भेद करना भी पता नहीं है। अरे इतना तो सोचा होता कि कितने बड़े हो महान, अरे मेरे से भी बड़े हो, तुमने बिल्कुल नहीं सोचा, कैसे इस प्रकार की बातें कर दिया उनसे। इस प्रकार से लेकर रूप गोस्वामी पाद बहुत डांटने लगे, बोले कि तुम सच में बहुत ही बेकार बहुत बहुत धिकारने लगे, और तुम तो बिल्कुल अब तो आना ही मत, वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ इधर से अभी का अभी निकल जाओ। और इस प्रकार से तुरंत ही फिर से जीव गोस्वामी पाद वहां से निकल गए। और बहुत इस बार तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होने लगा, बहुत ज्यादा। और कहां पे गए, मथुरा से भी बाहर गए, मथुरा से बाहर जाके कोई एक तालाब था जिसमें पानी नहीं था, जिसमें पहले मगरमच्छ रहा करते थे। उस समय नहीं थे मगरमच्छ, वो उस प्रकार के कोई एक तो जमीन के अंदर गुफा में बैठ कर ना केवल रोते थे वहां पे, बहुत रोते थे पूरे कई दिनों तक वो वहां पे रोते रहे। गांव के लोग, बहुत सारे लोग देखते थे उनको, देखते थे अरे कौन है बाबा जी यहाँ पे रोता रहता है दिन भर रोता रहता है। तो अभी इस बार तो इतना दूर निकल चुके थे कि इस बार सनातन गोस्वामी पाद को कई दिनों तक तो खोजना पड़ा। सनातन गोस्वामी पाद खोजने के लिए निकले कि जीव गया किधर करके, तो खोजते खोजते गांव वालों से पूछते अरे ऐसा कोई बाबा है, ये है वो है। तो गांव वालों ने बताया कि अरे एक बाबा है बहुत दिनों से खंडहर में जहां पे मगरमच्छ रहा करते थे वहां पे रह के बैठ के रो रहा है वो दिन भर केवल। तो सनातन गोस्वामी पाद जाते हैं वहां पे, वो जीव गोस्वामी पाद को लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो शिक्षाएं है, देखिए कि कितने महान भक्त थे, वैष्णव थे, उन्होंने हमेशा ये जो नम्रता जो है ना इसको उन्होंने ये किया कि किस प्रकार से एक वैष्णव को कितना नम्र होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु जो भी है कुछ इंस्ट्रक्शन देते उससे तकलीफ होता है, लेकिन हमको उसको पालन करना चाहिए, हमको भले से तकलीफ हो रहा है लेकिन उसको पालन करना चाहिए हमको। तो ये बहुत सारे शिक्षाएं जो कि हम जीव गोस्वामी पाद के जो पास्ट टाइम से उनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद ने भी उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा दिया, है ना। जीव गोस्वामी पाद जानते, रूप गोस्वामी पाद जानते थे जीव गोस्वामी पाद की स्थिति, लेकिन उनके माध्यम से हमको उन्होंने शिक्षा दिया। तो इस प्रकार से जब रूप और सनातन के वृंदावन से जाने के बाद, मतलब उनका शरीर त्यागने के बाद, वृंदावन में कोई अग्रज बने हा? तो फिर जीव गोस्वामी पाद बने ऑटोमेटिक, पूरा वैष्णव समाज जो है ना वो जीव गोस्वामी को फॉलो करने लगा। कोई वोटिंग नहीं है, वोटिंग नहीं हुआ कौन मठाधीश बनेगा, वोटिंग नहीं हुआ, सब स्वाभाविक तरीके से उनको ऐसे ही होता है। जब हम अच्छे भक्त बनेंगे ना स्वाभाविक तरीके से हर एक लोग हमसे प्रेम करेंगे, स्वाभाविक तरीके से, बोलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो बोल के अच्छा अपने आप को बोला ही कर रहते हैं। तो इस प्रकार से वो वृंदावन में रहकर भजन करने लगे, और उसके बाद जगह जगह से लोग, पूरे विश्व से सारे लोग जब भी जीव गोस्वामी पाद के बारे में जाने, तो सारे जितने भी गुरु थे ना अपने शिष्यों को जीव गोस्वामी पाद के पास शिक्षा करने के लिए भेजने लगे। बंद कर दे, टाइम हो गया बहुत। प्रभु जी नहीं आए अभी तक आपके, मैं उनका ही वेट करते करते खींच रहा हूँ। तो ठीक है, खत्म कर देते हैं थोड़ा सा करके। तो इस प्रकार से बहुत सारे गांव से लोग भेजा करते थे, विशेष करके बंगाल के जो हृदय चैतन्य के बारे में जानते हैं, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु चले गए थे छुपने के लिए, उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा, वो लंबी कथा है, वो बाद में करेंगे। तो हृदय चैतन्य जो अपने शिष्य कृष्णदास को उन्होंने भागवत सीखने के लिए जीव गोस्वामी पाद के पास भेजा, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य श्रीनिवास आचार्य को उनके पास भेजा, और लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर के, इन तीनों को, तीनों लोग घनिष्ठ मित्र बन गए और वो शिक्षा प्राप्त करने लगे, भागवत सीखने लगे जीव गोस्वामी पाद के अंडर में रखे। और जीव गोस्वामी पाद को जब ये लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय जीव गोस्वामी पाद को जाह्नवा माता का एक लेटर आया। जाह्नवा माता कौन? नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उनके एक लेटर आया, उसमें आदेश था जाह्नवा माता का कि जीव गोस्वामी पाद को कि इस बंगाल में इन जो गोस्वामियों ने जो रूप और सनातन दे के गए इन गोस्वामी ने, इन ग्रंथों का वितरण करो बंगाल में, बंगाल भाषा में छाप के उनको कन्वर्ट करो और करके कैसे भी करके यहाँ पे वितरण करो बंगाल के लोगों के लिए, ये आदेश इसको शिरोधार, क्योंकि किसका स्मरण किए, नित्यानंद प्रभु का, अपने शिरोधार किया जीव गोस्वामी पाद ने। और इन जो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और कृष्णदास जो की बाद में चल के श्यामानंद प्रभु बने, तो उनको उन्होंने भेज दिया ग्रंथों को लेकर बंगाल। तो ये पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम यहाँ से निकला, है ना। हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के आचार्य हमारे प्रभुपाद जी, है ना, उससे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज भी बुक के ऊपर बहुत ये करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन आदि गुरु कौन है, जीव गोस्वामी पाद। इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेन फाउंडर आचार्य आदि गुरु है वो जीव गोस्वामी पाद, वहां से शुरू हुआ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। तो बहुत तरह बैलगाड़ी में लेके वो लोग वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके निकले। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके से वो वृंदावन में रह के ग्रंथों को लिखते थे, और साथ साथ में उनको एक विग्रह प्रदान किए थे रूप गोसाईपाद। रूप गोसाईपाद ने राधा दामोदर विग्रह को ना अपने हाथों से बनाया था, राधा दामोदर विग्रह को जो आज हम देख रहे हैं, कहाँ पे, जयपुर में भी है और वहां पे भी है, वृंदावन में भी। तो उन विग्रहों को अपने हाथ से बना के दिया है ना, हाथ से बना के दिया, उन विग्रहों की सेवा करते थे। विशेष करके ये जो राधा दामोदर मंदिर है, ये जीव गोस्वामी पाद ने इस राधा दामोदर मंदिर को बनाया। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं ना, जीव गोस्वामी पाद ने बनाया। वृंदावन में 7 महत्वपूर्ण मंदिर है, होमवर्क होमवर्क, कौन कौन से है सब लिख लीजिए, अभी टाइम नहीं इसलिए पूछूंगा नहीं, 5 मिनट में खत्म करना है ना। राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ और राधा रमन, ये 7 प्रमुख मंदिर है वृंदावन के। हम कभी भी जब वृंदावन जाते हैं ना, इन 7 प्रमुख मंदिरों का दर्शन, जैसे कि हमें भी अभी हम जा रहे हैं कार्तिक में, तो हमको इन 7 मंदिरों का प्रमुख, हमको वहां पे भक्त लोग जाएंगे नहीं साथ में घुमाने के लिए, क्योंकि गली गली में है, आपको स्वयं से इन मंदिरों का दर्शन करना रहता है। तो पता रहेगा तो रिक्शा वाले को बोलेंगे राधा रमन, तो ले राधा रमन ले जाएगा, वहां से उसको बोलेंगे तो उधर ले जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए नाम, तभी आप बोल सकते हैं। तो राधा दामोदर मंदिर का निर्माण किन्होंने किया, जीव गोस्वामी पाद ने, और राधा मदन मोहन मंदिर का सनातन गोस्वामी पाद ने, और राधा गोविंद मंदिर का रूप गोस्वामी पाद, लिख लीजिए सभी, ये होमवर्क है। हाँ, रूप गोस्वामी पाद, राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्यामानंद पंडित, और राधा गोकुलानंद मंदिर मधु पंडित ने, और राधा गोपीनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी, और राधा रमन, राधा रमन कौन, अरे सुनाए तो इतना बोलो, राधा रमन कौन, गोपाल भट्ट गोस्वामी। होमवर्क है अगली बार का, कुछ नहीं, एक साइड मंदिरों का नाम लिखिए, एक साइड आचार्यों का नाम लिखिए, है ना, ये होमवर्क रहेगा। तो इस प्रकार से राधा दामोदर मंदिर जो है ना, एक्चुअली वृंदावन में, वृंदावन ही क्या, पूरे एक्चुअली देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान कोई है ना, राधा दामोदर मंदिर है। वहां पे बहुत विशेष स्थान, वहां पे जितने भी आचार्य हुए, जितने भी महान वैष्णव हुए, वो सब लोग वहीं पे रह के भजन किए, और वहीं पे रह के वहां पे भागवत के, भागवत चलता था वहां पे, भागवत कथा हमेशा कंटिन्यू हुआ करता था। इसलिए देखिए, जीव गोस्वामी पाद का भी समाधि वहीं पे है, रूप गोस्वामी पाद का भी समाधि वहीं पे है। सबसे पहले भूगर्ग गोस्वामी जो कि वृंदावन में सबसे पहले आए, इन रूप सनातन से भी पहले भूगर्ग गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी उससे पहले भी आए, और भूगर्ग गोस्वामी का भी समाधि राधा दामोदर मंदिर है। और ऐसे नहीं, कितने अनेक समाधियां, हजारों समाधि राधा दामोदर मंदिर है, जिनका हम परिक्रमा मार्ग में करते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस महत्वपूर्ण स्थान को याद रखते हुए, जब प्रभुपाद जी को 26 साल की उम्र में ही भक्ति सिद्धांत महाराज का आदेश हो गया, क्या आदेश हुआ, फर्स्ट बार में क्या आदेश हुआ, इतने पढ़े लिखे हो तो विदेश में प्रचार करो, हाँ पाश्चात्य देश में जाके लोगों को प्रचार करो, अच्छा इंग्लिश आता है। तो इस आदेश को उन्होंने सिरोधार करके उसके ऊपर जो मनन ना, प्रभुपाद जी कितने साल तक किए, 40 साल उम्र तक, मतलब कितना साल, 14 साल तक, उस आदेश को प्रभुपाद जी ने 14 साल तक क्या किया, उसके ऊपर मनन किया। उसके बाद 40 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के वो फिर मंदिर इधर उधर कहाँ कहाँ सब जगह जाने लगे, घूमने लगे, रहने लगे, है ना, गौड़ी अमठ इत्यादि कहाँ कहाँ सब गए। लेकिन 60 साल की उम्र में जब से प्रभुपाद जी जब संन्यास लिए, संन्यास के बाद 60वें साल में प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में गए। राधा दामोदर मंदिर में जाके प्रभुपाद जी कितने दिन रहे वहां पे, 6 साल तक प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहे, 6 सालों तक प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहे, और वहां पे रह के भागवत का पहला और दूसरा स्कंद लिखे, और वहां पे रूप गोस्वामी पाद का समाधि जीव का, उनकी प्रेरणा से, उनका दर्शन करते हुए, उनका आशीर्वाद से प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को लिखा। और वहां पे उन्होंने, प्रभुपाद जी ने आज इतना बड़ा मोमेंट चालू किया है ना, इतना बड़ा इस्कॉन, कितना बड़ा ये घर चालू किया प्रभुपाद जी ने, ये जो है ना ये जो शक्ति प्रभुपाद जी को मिला उस राधा दामोदर मंदिर में 6 साल रह के, वो शक्ति स्पिरिचुअल जो एनर्जी है ना, वो शक्ति प्रभुपाद जी ने अर्जित किया, उसके बाद निकले प्रभुपाद जी, जो कि पूरे विश्व को बदल दिया उन्होंने सब जगह जाके। तो इस प्रकार से बहुत विशेष स्थान है राधा दामोदर मंदिर। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामीपाद का आविर्भाव दिवस और उनके बारे में हम सोचते हुए, स्मरण करते हुए, उनसे कृपा की याचना करते हुए इस सत्र को समाप्त करते हैं, कि किस प्रकार से उनके जो नम्रता का जो गुण है, विशेष करके अपने गुरु की जो सेवा है, ये सारे एक लंच मात्र भी हमारे अंदर आए, ताकि हम जो कि भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी गोस्वामी पाद की, सड गोस्वामी की, हरे कृष्णा। लेट हो गया।